ओ तो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज द्वारा विरचित वेदांत डिंडिमः नामक स्तोत्र, इस स्तोत्र के आधार पर कुछ वेदांत विचार करेंगे। कल मंगलाचरण श्लोक, पहले श्लोक की व्याख्या हुई थी। जैसे कि परंपरा है, कोई भी कार्य आरंभ करो तो मंगलाचरण पूर्वक करनी चाहिए। यूं तो समस्त आचरण ही मंगल होनी चाहिए। हमको जो अभी दुख मिल रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है, जन्मांतरीय अमंगल कर्मों के चलते हुआ है। हमको ये पता नहीं है कि कौन सा कर्म मंगल है और कौन सा कर्म अमंगल है। हम लोभ में आकर भी जो कर्म कर लेते हैं तो हम उसको विचार नहीं कर पाते हैं कि ये कर्म अमंगल है, लेकिन कर डालते हैं, कर देते हैं। मोह में आकर हम कर्म करते हैं और हम विचार नहीं कर पाते हैं कि ये कर्म अमंगल है। वेदांत की दृष्टि से निषिद्ध कर्म तो अमंगल है ही है, काम्य कर्म भी अमंगल है। और इसीलिए कहा गया है कि मंगल कर्म क्या है। यत करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम्। ये मंगल कर्म है, ये मंगलाचरण है। हम इस तरह आचरण करते हैं तो ये होता है मंगलाचरण, और इस तरह का आचरण करते हैं तो भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता में, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिमां भसा। कर्म कर लेने पर भी ये कर्म उसको इसी तरह नहीं छू सकते हैं जिस तरह पानी में रहने पर भी पानी कमल के पत्ते को नहीं भिजा सकता। तो कर्म तो वास्तव में मंगल होनी ही चाहिए, आचरण पूर्ण रूप में मंगल होनी ही चाहिए, अन्यथा कर्मानुबंधी नि मनुष्य लोके। हम मनुष्य बंधे हुए हैं किसके द्वारा, तो बोले खुद के कर्म के द्वारा बंधे हुए हैं। दूसरे के कर्म हमको बंधन में नहीं डाल सकता है। कहने के लिए तो कह दिया जाता है, संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक प्रसंग में ये बात कही है कि गलती करे कोई और भोगे कोई और, ये कहां का नियम है। प्रसंग ये था, भ्रांतिवश भ्रमवश दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा। जानबूझकर तो नहीं मारा था, भ्रांति के चलते, भ्रम के चलते मारा। परिणाम यह हुआ है कि श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, तो भी इसी तरह तड़पता हुआ मरेगा। अब यही श्राप ही कालांतर में भगवान राम को जंगल जाने की नौबत आ गई। प्रसंग यही है, इसी प्रसंग में दशरथ ने यह वाक्य कही है, गलती मैंने की है तो मैं भोगूं, राम क्यों भोगे, मुझे जंगल जाना चाहिए, राजपाट से मुझे वंचित किया जाना चाहिए और जंगल में जाकर मैं तड़पते हुए मरूं, ये तो ठीक है, मेरे कर्म का फल है। लेकिन राम ने किया क्या था, और उसको 14 वर्ष तक जंगल में सोहम ब्रजामि विपिने जटिलो तपस्वी है। यच्चिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति, यच्चेतसा न कलितं तदिहाभ्युपैति। भैया लक्ष्मण जो सोचा था वो तो 14 वर्ष के लिए निकल गया, और जो सोचा ही नहीं था वो सामने आ गया। राजकुमार महाराजा दशरथ के पुत्र हम लोग जन्मे हैं, दशरथ अयोध्या में, दशरथ के दरबार में दशरथ के पुत्र होकर जन्मे पैदा हुए हैं, और 14 वर्ष तक नंगे पांव वल्कल वस्त्र धारण करके जटाजूट होकर जंगल में रहना पड़ेगा, ये कोई नहीं सोच सकता। ईमानदारी से कहना, आप लोग में से कोई मेरा बेटा राख लपट कर फकीर बनकर दर दर भीख मांगते हुए घूमेगा, ये सोच सकते हो? सोच सकते हो? जरा वो पिक्चर को दिमाग में तो लाओ, मेरा बेटा कुंभ मेले के नागा सन्यासियों की तरह राख लपेट कर, सोच सकते हो? दिमाग में कल्पना कर सकते हो? कोई मां बाप ऐसी कल्पना कर सकता है? मान लो कर लो तो हर्जा क्या है? हर्जा तो कुछ नहीं है, करते ही हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन सोच नहीं सकते हम। और एक हम साधारण व्यक्ति नहीं सोच सकते हैं तो क्या राम राजकुमार दशरथ का बेटा न प्रजा सोच सकती है, राज परिवार सोच सकते हैं, न खुद राजकुमार सोच सकते हैं ये बात? लेकिन जो कोई भी सोच नहीं सकता है वो प्रसंग सामने उपस्थित हो गया है। 14 वर्ष के लिए जटिलो तपस्वी, और ये चेतसा न कलितम तदिहाभ्युपैति आ गया सामने, और ये चिंतितम शाम के समय में गुरु वशिष्ठ आकर राम को समझा रहे हैं, राम तुम्हारे पिता दशरथ ने कल तुम्हारा राज्याभिषेक करने की तैयारी की है, सब उत्सव मनाया जा रहा है, व्यवस्था हो चुकी है, तुम्हें आज रात इस तरह रहना है, अभिष्य अन्न खाना है, एक टाइम खाना है, शुद्ध खाना है, जमीन में सोना है, क्योंकि विधि है, विधि अनुसार तुमको रहना है। वशिष्ठ जी तो समझा के चले गए, राम कल्पना करने लगे कि कल हम राजा बनेंगे, युवराज बनेंगे। तुरंत लक्ष्मण को बुलाकर कहा कि भैया देखो, गुरुजी आए थे और उन्होंने कहा कल का प्रसंग, कल का कार्यक्रम, हमारा राज्याभिषेक होगा, हम युवराज बनेंगे, और सुबह सूर्य उदय होने से पहले पहले दशरथ ने बुलाया राम को और कहा कि तू 14 साल के लिए जंगल चला जा, और शरीर में कोई कपड़े नहीं होने चाहिए, पांव में कोई चप्पल जूते नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मण तो सोच रहे थे कि आज मेरे बड़े भैया का राज्याभिषेक होगा, युवराज पद की क्या उत्सव की तैयारी, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से पहले पहले राम ने निकलने की तैयारी की और लक्ष्मण को कहा कि भैया मैं तो जा रहा हूं। कहां? बोले जंगल। कल शाम को कहा था कि राज्याभिषेक होने वाली है, अब कहते हो कि जंगल जा रहा हूं, ये क्या विडंबना है? भगवान राम ने कहा लक्ष्मण को, यह चिंतितम यही होता है। जो सोची हुई बात है, जो प्लान बनाते हैं, जो योजना बनाते हैं, जो कल्पना करते हैं, वह तो दूर चला जाता है, और जो बिल्कुल कल्पना नहीं की, सोचा भी नहीं था, अब व्यपैती सामने आ गया, वो जंगल जाना है मुझे, ये तो संसार का नियम है भैया। व्यक्ति को इन प्रसंगों से लिप्त नहीं होनी है, असंग रहना है। प्रसन्नता या नगता विषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः। कल राज्याभिषेक होगा ये समाचार सुनने पर भगवान राम के हृदय में कोई उत्साह नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, कोई हर्ष नहीं। तथा न ममले वनवास दुखतः। रात बीतते बीतते तुमको जंगल जाना है, ये बात सुनने पर भी उनकी चेहरे में कोई मलानी नहीं है, न ममले, कोई खिन्नता नहीं है, सहजता। जीवन इसी तरह चलाओगे तो सब जीवन मंगलमय होगा, हर आचरण मंगलमय होगा। तो हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम आसक्ति कर लेते हैं, अटैचमेंट कर लेते हैं, जुट जाते हैं प्रसंगों पर। दक्षिणामूर्ति भगवान शिव जो गुरुमूर्ति है, उन इष्टदेव और गुरु, भगवान शिव गुरु भी हैं, गुरु भी हैं, और भगवान शिव इष्टदेव भी हैं। एक ही वाक्य से गुरु और इष्टदेव दोनों का स्मरण किया। इसको कहते हैं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। आप लोग ब्रह्मसूत्र के भाष्य में सुना हो, तीन प्रकार के मंगलाचरण हैं। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, जहां नमः आदि का प्रयोग होता है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, जहां स्वस्ति आदि का प्रयोग होता है। और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, जहां नमः और स्वस्ति आदि का कोई शब्द प्रयोग नहीं होता, यथार्थ वस्तु का निर्देशन कर दिया जाता है, प्रतिपादन कर दिया जाता है, वो भी मंगलाचरण है। तो ये तीन प्रकार के मंगलाचरणों में से इस स्तोत्र के आरंभ में आदिगुरु शंकराचार्य जी ने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया है। तत्तेज, आस्तान पुरस्तात, वो जो तेज है, वो जो प्रकाश है, जो लाइट है, लाइट का अर्थ है आंख से दिखने वाला लाइट नहीं समझना हो, लाइट का अर्थ रोशनी नहीं समझना। एक अंधे व्यक्ति को लाइट का अनुभव है कि नहीं, जन्मांध व्यक्ति को रोशनी का अनुभव है कि नहीं है? एक जन्मांध व्यक्ति को रोशनी का, लाइट का अनुभव है कि नहीं? लेकिन उसको भी लाइट का अनुभव है, क्योंकि यदि किसी भी पदार्थ को वो जानता है तो उस लाइट है, उसी को लाइट है। ज्ञान को यहां प्रकाश कहा। अब प्रकाश का अर्थ है, लाइट का अर्थ है, ये भौतिक लाइट नहीं समझना, ये रोशनी नहीं समझना, जो चक्षुर इंद्रिय का विषय होता है वो नहीं समझना। अंधे व्यक्ति को भी उस लाइट का अनुभव होता है, जिसे उसको कहते हैं ज्ञान चक्षु। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषाः। आंख वाले नहीं देख सकते हैं जिसको वह बिना आंख वाला देख लेता है। आंख वाले यदि विमूढ़ हुए हैं तो नहीं देखते। अंधा यदि विवेकशील है तो वह देख लेता है। तो ये ज्ञान चक्षु की बात है। आप लोगों को हमने कई बार समझाया है तीन प्रकार के चक्षु हैं, चर्म चक्षु, धर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु, त्रिनेत्रम है। वह जो तेज है, वह जो प्रकाश है, वह ज्ञान प्रकाश है जो ज्ञान रूप है। इसलिए हमने मंगलाचरण किया, विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से। तो ज्ञान ही जिसका स्वरूप है वह पुरस्तात मेरे सामने उपस्थित हो, प्रकट हो, यानी मुझे अनुभव में आवे, मेरा अनुभव का विषय बने। अब यहां अनुभूयमान जो प्रकाश तेज है और अनुभवकर्ता जो शंकराचार्य जी हैं, वेदांत दर्शन के हिसाब से अन्य को अन्य का अनुभव नहीं, स्वयं को स्वयं का अनुभव ही, उसी को ही यहां शंकराचार्य जी पुरस्तात आस्ताम मेरे अनुभव के विषय में आ जावे, हो जावे। जैसे दसवां स्तोमसी के प्रसंग में अन्य दसवां व्यक्ति अन्य को अन्य का अनुभव होने का प्रसंग नहीं है, हालांकि अन्य को भी अन्य का अनुभव होगा, बाकी नौ को भी यह अनुभव होगा कि दसवां यह है, लेकिन पहले से ही सभी को ये भ्रांति हुई थी कि दसवां नहीं है। तो गुरु कृपा से क्या हुआ, दसवें को भी मैं दसवां हूं। तो क्या ये अन्य को अन्य का अनुभव है, स्वयं को स्वयं का अनुभव है ना। दसमस्तमसी गुरु के एक वाक्य के बाद वो दसवें को जो अनुभव हुआ है कि अहम दसवां है, गुरु ने कहा कि दसमस्तम असि, शिष्य ने कहा कि हां अहम दसवां अस्मि, मैं दसवां हूं। अब और नौ व्यक्ति जो ये कह के रो रहे थे कि दसवां बह गया, वो खुद दसवां भी रो रहा था कि दसवां बह गया है। अब दसवां निश्चिंत होगा कि दसवां बया नहीं है, मरा नहीं है, साथ ही नौ को भी निश्चय हो गया कि दसवां मरा नहीं है। और नौ को चक्षु प्रत्यक्ष हुआ दसवें का, समझ गए कि नहीं, और नौगों को दसवां क्या हुआ, चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन उस खुद दसवें को चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ दसवां है। दसवें को मैं दसवां हूं ये जो प्रत्यक्ष हुआ, अभी चाक्षुष प्रत्यक्ष तो है ही नहीं, ठीक है, सुसंवेद्य बिना चक्षु का, अंधे को भी यह अनुभव हो सकता कि दसवां मैं हूं, लेकिन वो नौ यदि नौ के नौ अंधे होते तो अनुभव होता उनको दसवां है। दसवां यदि अंधा होता तो उसको अनुभव होता कि नहीं कि मैं दसवां हूं, लेकिन वो नौ के नौ दस अंधे होते तो अनुभव होता कि दसवां यह है, दसवां जिंदा है, यह अनुभव होता। इसी तरह वेदांत का है, वेदांत जब ये कहता है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो, दर्शन हो, इसका अभिप्राय अन्य को अन्य का अनुभव नहीं है, स्वयं को स्वयं का अनुभव है। दूसरा श्लोक, आत्मानात्मा पदार्थौ दौ भोक्तृ भोग्यत्वलक्षणौ ब्रह्मैवात्मान देहादिः इति वेदांतडिण्डिमः। हाँ, ये चतुर्थ जो पाद है वो सब जगह अनुवृत्ति होगा। इति वेदांत डिंडिमः। देहादि रीति, देहादि रीति, तो र जो है विसर्ग होता है, र विसर्ग हो जाएगा, देहादि इति ऐसा संधि होगा, और विसर्ग र बन गया है इसलिए ई र के साथ मिल गया है तो रीति हो गया। लेकिन अलग करते समय, पढ़ते समय, पढ़ते समय आप भले ही वेदांत रीति करो, छंद भंग नहीं होगा क्योंकि छंद पूर्ति होगा, लेकिन अर्थ करते समय वेदांत देहादि ही इति वेदांत, इति माने इस प्रकार से। वेदांत डिंडिमः, ये वेदांत का घोष है, उद्घोष है, है? वेदांत का ये उद्घोष है। क्या उद्घोष है? संसार में टोटल दो वस्तु हैं, दो के अलावा तीसरा नहीं है, है ना? संसार में टोटल दो वस्तु हैं, दो के अलावा तीसरा नहीं। क्या है वो दो? आत्मा और अनात्मा। बस तुम दो हो, तुम अभी यहां जो बैठे हो दो रूप से बैठे हो, एक पदार्थ के रूप में बैठे हो, मैटेरियल के रूप में बैठे हो, पदार्थ के रूप में, मैटेरियल के रूप में। और जो पदार्थ मैटेरियल के रूप में तुम बैठे हो वह अनात्मा के रूप में बैठे हो। किस रूप में? अनात्मा के रूप में। तुम्हारा शरीर मैटेरियल है, पदार्थ है, ज्ञेय है, आगे सब आएंगे शब्द, भोग्य हैं, जड़ हैं, और तुम मैटेरियल नहीं हो, पदार्थ नहीं हो, तुम पदार्थों का ज्ञाता हो। जो सभी पदार्थों में व्याप्त होकर अनात्मा शरीर आदि में तुम्हारी उपस्थिति है संयुक्त रूप में, क्योंकि तुम्हारे पास अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। एक तो ये पांच कोशों से बना हुआ, युक्त हुआ हुआ सावयव पंचकोशात्मक शरीर के रूप में है। दूसरा, ये पांचों कोशों में व्याप्त होकर ये पांचों कोशों को सत्ता और स्फूर्ति देने वाला, पांचों कोशों को सत्ता देने वाला, अब पांचों कोशों को स्फूर्ति माने प्रकाशित करने वाला, जानने वाला। जानने वाला, क्योंकि हमने कल भी प्रसंग में ये कहा था, जानने वाला सिर्फ जानने वाला होता है, जाना जाने वाला नहीं होता। इसको दूसरे शब्द में बोलो, जानने वाला ज्ञाता सिर्फ ज्ञाता के रूप में ही होगा, जानने वाला ज्ञाता ज्ञेय कभी बन ही नहीं सकता है, जानने वाला ज्ञाता कभी ज्ञेय नहीं हो सकता है, ना खुद के द्वारा ज्ञेय होगा ना दूसरों के द्वारा ज्ञेय होगा, ज्ञाता। और दूसरे के द्वारा ज्ञेय तो होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि ज्ञाता एक है, जानने वाला तो एक है। ज्ञान के साधन अनेक हैं, ज्ञेय अनेक हैं, ज्ञाता एक है। इसलिए ज्ञाता टोटल एक है, तो दूसरे के द्वारा जाना जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं यदि तुम्हारे लिए तुम्हारे बारे में जानूंगा, मैं यदि तुम्हारे बारे में जानूंगा, वह तुम्हारा पदार्थ होगा, मैटेरियल होंगे, लेकिन तुम नहीं होगे। मैं ज्ञेय को जानूंगा, ज्ञेय को जानूंगा जो पदार्थ हैं, पंचभूतात्मक हैं, जड़ात्मक हैं, वस्तुआत्मक हैं, परिणामात्मक हैं, विकारी आत्मक हैं, संघातात्मक हैं, सावयवात्मक हैं, दृष्ट नष्टात्मक हैं, उनको मैं जानूंगा। तुम यदि विद्वान हो, मैं कहूंगा कि फलाना व्यक्ति बड़ा विद्वान है, इसका मतलब है कि मैंने तुमको तुम्हारी बुद्धि को जाना है, तुमको नहीं जाना है। समझे कि नहीं? इसका मतलब मैंने तुम्हारी बुद्धि को जाना है, और बुद्धि तो ज्ञेय है। बुद्धि को तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। बुद्धि खुद परप्रकाश्य है, बुद्धि स्वयं प्रकाश नहीं है। स्वयं प्रकाश होता तो सुषुप्ति में उसकी उपलब्धि होती। बुद्धि स्वयं प्रकाश होती तो सुषुप्ति में भी बुद्धि का अनुभव होता, उपलब्ध होता। तो स्वयं प्रकाश नहीं है बुद्धि, परप्रकाश है। तो दूसरों को दूसरे भी जान सकते हैं। मेरे बुद्धि को तुम भी जान सकते हो कि स्वामी आत्मानंद विद्वान है, भले ही न कहो तुम। इसका मतलब मुझे नहीं जान रहे हो, मेरी बुद्धि को जान रहे हो। तो संसार में केवल दो पदार्थ हैं, आत्मा और अनात्मा। तो पदार्थो दो, इसी दो पदार्थ ही क्रम से भोक्तृभोग्यत्व लक्षण। आत्मा हालांकि वेदांत के भाषा से भोक्ता नहीं बन सकता, आत्मा तो अभोक्ता है, अकर्ता है, अभोक्ता है, लेकिन यहां उस अर्थ में नहीं, यहां चेतना के अर्थ में कहा गया है। तो वाच्यार्थ में, सोपाधिक अर्थ में, वाच्यार्थ में, सोपाधिक अर्थ में यहां उस चेतना को भोक्ता कहा गया है, क्योंकि जड़ जड़ का भोक्ता नहीं बन सकता है। यह भोक्ता का अर्थ ज्ञाता भी होता है, वस्तु को जानना भी वस्तु का भोग है। क्या समझे? ये फूल है, ये फूल की माला है, इतना जानना भी इस माले का भोग है, उपभोग है। अब ये चेतना द्वारा ही होना है, आत्मा द्वारा ही होना है, इसीलिए हर पदार्थ को जानने वाला वो व्यक्ति, हर पदार्थ जिसको जान रहा है उसका भोग कर रहा है। अब इस समय बैठकर शब्दों का भोग कर रहे हो, किसका भोग कर रहे हो? शब्दों का भोग कर रहे हो, क्योंकि शब्द सुन रहे हो, शब्द के अर्थों को जान रहे हो, तो आप इस समय शब्द श्रोता नहीं शब्द भोक्ता हो। भले ही श्रोता करके कह दिया जाए लेकिन तुमको दूसरे वेदांत के भाषा के अनुसार तुमको दूसरे शब्दों से संबोधन किया जा सकता है, वह शब्द भोक्ता। तुम क्या हो इस समय? शब्द भोक्ता। एयर कंडीशन चल रहा है इसके वजह से कमरा ठंडा, हॉल ठंडा है, इसका मतलब तुम स्पर्श भोक्ता हो, भोग रहे हो, जान रहे हो कि कमरा हॉल ठंडा है। आत्मा अनात्मा पदार्थौ दौ भोक्तृ भोग्यत्व लक्षणौ। आत्मा में भोक्तृत्व है, भोक्तापना है, और अनात्मा में भोग्यता है। अनात्मा में क्या है? भोग्यता है। इसकी उपयोगिता है, उपभोगिता है, उपभोग में ही उपयोगिता है। इसलिए संसार के कोई भी पदार्थ अनुपयुक्त नहीं है, अनुपयोगी नहीं है, व्यर्थ नहीं है, सार्थक है। संसार के कोई भी पदार्थ व्यर्थ नहीं है, सार्थक है। चाहे वह ईश्वर निर्मित पदार्थ हो तो भी कोई न कोई सार्थकता है, और चाहे वह जीव निर्मित पदार्थ हो उसमें भी सार्थकता है। हर पदार्थ में सार्थकता है। सार्थकता है माने भोग्यता है। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे द्वारा ही भोग्यता है। जिसको तुम निरर्थक और अभोग्य मानकर परित्याग कर रहे हो वो दूसरा उसका उपभोग कर रहा है, उसके लिए वह बड़ा उपयोगी है, उपभोग्य है। जहर भी तुम्हारे उपयोगी है, उपभोग्य है। मरने वालों के लिए उपभोग्य उपयोग्य है कि नहीं है? बोलो। उसके कर्मों में सुसाइड करके मरना लिखा होगा तो उसको जहर चाहिएगी नहीं, तो भगवान ने सोचकर ही बनाया है। तुम्हें जरूरत न हो तो अलग चीज है, लेकिन जिसको जरूरत हो वो तो उसको खोजेगा, उसके उपयोग करेगा, उपभोग करेगा, वो उसके द्वारा वो अपने को सार्थक मानेगा। आत्मा अनात्मा पदार्थौ दौ भोक्तृ भोग्यत्व लक्षणौ। अब जहां भी भोक्तृता है, भोक्तृता माने चेतनता है, यानी ज्ञातापना है, जानने वाला, जाननापना है, वह ब्रह्मैव आत्मा। जिसको आत्मा कहा, आत्मा पदार्थ कहा, वह तो ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त और दूसरा है ही नहीं। ये जीव शिव की तो बात तुम्हारी कल्पना है, और जिसको तुम जीव शिव कह रहे हो, शंकराचार्य जी कहते हैं वो तो ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही जी, ब्रह्मैव जीवा सकलम जगच्च, ब्रह्मैव जीवा सकलम जगच्च। ब्रह्मैवात्मा न देहादि, देह आदि न आत्मा। ब्रह्म एव आत्मा, देह आदि न आत्मा। तीन देह तो आपको वेदांतों ने कहा ही है, वेदांतियों ने, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। ये तीन तुम्हारे पास हैं और इसको तुम आत्मा नहीं मान लेना। खुद को तुम क्या मानो? ब्रह्म मानो, ब्रह्म एव आत्मा, क्योंकि तुम्हारे पास तुम जो चेतना है वो ब्रह्म है, जो ज्ञाता है वो ब्रह्म है, जो भोक्ता है वो ब्रह्म है, दूसरा भोक्ता नहीं बन सकता है। और जीवात्मा को किसी ने कह दिया कि भोक्ता है, हालांकि वेदांत में ये कहा जाता है जीवात्मा को भोक्ता है, कह दिया जाता है। और जीवात्मा प्रातिभाषिक है, आभास है, तो आभास भोक्ता कैसे बनेगा, आभास भोक्ता कैसे बनेगा। उदाहरण, मिरर के सामने तुम खड़े हो जाओ तो मिरर के अंदर आभास दिखेगा। मनुष्य खड़ा होगा तो मनुष्य आभास दिखेगा कि नहीं, कुत्ता खड़ा होगा तो कुत्ता आभास दिखेगा कि नहीं मिरर में है? अब बताइए कि आभास कभी भोक्ता बन सकता है? मान लो कि ठीक दीवार में एक मिरर लगी हुई है और उस मिरर के नीचे टेबल रखी है, उसके आगे कुर्सी है और आपको भोजन करने के लिए कुर्सी में आप बैठे हैं, तो दो आदमी कुर्सी में पैरेलल पर बैठे हुए नजर आएंगे कि नहीं है? दो आदमी आमने सामने बैठे हैं, नजर आएगा कि नहीं? तो रसोईया थाली लगाएगा, कितनी थाली लगाएगा है? क्यों नहीं लगाता दूसरे? आवास भोक्ता नहीं बन सकता है, उसको भी एक रसोई को भी पता है कि आवास भोक्ता नहीं हो सकते, एक रसोई को भी पता है और तुमको आज तक पता नहीं चला है आवास भोक्ता नहीं हो सकता है। तुम तो रसोईया नहीं हो ना, और आवास भोक्ता है करके घूम रहे हो और आवाज भोक्ता नहीं हो सकता है। इसलिए दो भाग लगाना नहीं कभी, द्वैत का तो कोई प्रसंग ही नहीं है। सीधी सी बात, एक रसोईया भी द्वैत नहीं करता है, दो भाग नहीं लगाता, अद्वैत, यही तो अद्वैत है। बिंब और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को क्या भाग लगाना पड़ता है? प्रतिबिंब की तो कोई काउंटिंग ही नहीं होती है, गणना ही नहीं होती है, और तुम हम गणना किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। मेरे दो बच्चे हैं, मेरे तीन बच्चे हैं, गणना किए जा रहे हैं, ये सब प्रतिबिंब हैं। पता नहीं ये कहां से नारा शुरू करा दिया, हम दो हमारे दो, या तो हम एक हमारे एक, एक के अलावा दूसरा तो है ही नहीं भाई है। सिर्फ बिंब, आत्मा, आत्मा ही एक है, दो तो हो ही नहीं सकता है। आत्मानात्मा पदार्थौ द्वौ भोक्तृ भोग्यत्व लक्षणौ, चेतना भोक्ता है, शरीर भोग्य है, आत्मा भोक्ता है, अनात्मा भोग्य है। ब्रह्मैवात्मा, आत्मा कोई साधारण चेतना नहीं, साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण वस्तु नहीं, वह ब्रह्म ही है। आत्मा शब्द का अर्थ सर्वव्यापी है, आपनोति व्यापनोति इति आत्मा बृहत्वात् ब्रह्मणत्वात् वा आत्मा ब्रह्मेति गीयते है। सबसे बड़ा होने के कारण सबको एक होता हुआ भी सभी को अपने में समेट लेने के कारण उस आत्मा को ब्रह्म कहा। जैसे आकाश सभी को समेट रहा है कि नहीं, आकाश एक है कि दो है? आकाश एक है, एक होने पर भी तमाम पदार्थों को उसने आत्मसात किया, सभी को समेटा हुआ है, किसी को भी अपने बाहर नहीं फेंका है उसने। उसी तरह ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है सबसे बड़ा, इसलिए उसको ब्रह्म कहा। सबको समेटा हुआ है इसलिए उसको ब्रह्म कहा। यदा आत्मनोति यदा दत्ते चात्य विषयान्निह ये चास्य संततो भाव तस्मात् आत्मेति गीयते। जिससे उत्पत्ति हो, जिसमें स्थित हो, जिसमें लय हो, यदा आपनोति, अपने में से मिरर के सामने खड़े होते ही एक पूरा का पूरा व्यक्ति तुमने पैदा किया, तुम आत्मा हो गए, तुमने उसको व्यक्त किया, प्रकट किया, और तुम जब तक खड़े रहोगे तब तक वो मिरर के अंदर का आभास जिंदा रहेगा। उसकी रक्षा कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। उसको पैदा तुमने किया, खड़े न होते तो पैदा होता, और तुम वहां खड़े हो इसलिए वो जिंदा है, और तुम हटते ही वो मर जाएगा तो उसको मारा किसने, उसको नाश किया किसने? तुमने। इसी का नाम आत्मा है ये। और आगे क्या है कल देखेंगे। एक सूचना, ये जो कॉपी प्रेमप्रिय आश्रम ने बनाई है बड़ा दुर्लभ कॉपी है, इसका दुरुपयोग नहीं करना, और बहुत खर्चा किया है, हर पेज का एक कॉपी बनाया, और ये नहीं कर देना कि यहां से जाते समय में झोले में डालकर जाओ और घर में रख दो, कल आते समय फिर भूल गए, फिर यहां खोजो दूसरी कॉपी। तो ये नौबत ना आवे प्रेमपुरी आश्रम को कि फिर दोबारे कॉपी कम हो गए बनाओ। कम क्यों होंगे भाई है? तुम ले जाके घर में रख दोगे, आते समय भूल जाओगे तब कम होंगे, या तो फिर ऐसे भूलने की आदत है, ईमानदारी से यहां रख के जाना, और भूलने की आदत नहीं है तो ईमानदारी से लेकर आना। तो यही सूचना के सहित आज का कार्यक्रम समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।